हमारे यहाँ तो खैर कोशिश ही नहीं हो रही। मेरा तो मसला या शिकायत यह है कि यहाँ कोशिश ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारा शुरू दिन से जो मॉडल था वो स्टेट डिपेंडेंट था कि गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे तो चैनल्स और अखबार चलेंगे। वो अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, विच इज़ ऑल्सो वाई इतने ज़्यादा आ जाते हैं बिजनेस इंटरेस्ट को, जैसे आपने कहा प्रोटेक्ट करने, या इतने ज़्यादा हैं जिसमें छः छः महीने, आठ आठ महीने वो तनख्वाहें नहीं देते बट चलाए चले जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना कि और इंडस्ट्रीज़ में ऐसे नहीं होता।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इलेक्शंस पे तजिए और ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और इनकी मैं बातें सुनता रहता हूँ एंड आई एम ऑलवेज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद हर इनसाइट्स। तो इसलिए हमने आरफा नूर को आज बुलाया है। जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ आए आप देखते होंगे और इनका आज ही शो है, तो थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया। हाउ यू डूइंग?
बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। मेरा मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ कि मुझे पॉडकास्ट में वन ऑन वन गेस्ट बुलाया जाए, सो आई एम क्वाइट थ्रिल्ड।
नहीं नहीं, अभी 15 मिनट बाद अफ्सा कोमल भी आ रही है, एक पैनल है पूरा 3-4 लोगों का। नहीं नहीं,
damn, damn, my heart shatters into little pieces.
No, no, तो प्लीज़ ये जनरल तज्जिए कि ये जीतेगा वो जीतेगा, वैसे भी इलेक्शन के बाद आएगी तो पता नहीं कू होगा क्या होगा, तब तो पता भी नहीं। So in terms of the structure of electoral politics in Pakistan, what do you think the general analysis ho raha hota hai people are missing out on or are not understanding?
You mean is election mein?
Generally in ke jo Pakistan mein electoral politics hoti hai wo kis tarah ki hoti hai?
पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखें जो है उसको हमें हल्के के लेवल पे देखना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। हम कई दफ़े शायद जब सियासत को देखते हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शंस को देखते हैं तो यू नो यू लुक एट द, बहुत ज़्यादा शायद कई दफ़े फोकस कर लेते हैं कि एक सियासतदान की या एक पॉलिटिकल लीडर की कितनी मकबूलियत है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इशूज़, बट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को हमें कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर देखना पड़ता है और उसके अंदर मिस करने से ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि जो नंबर्स गेम है वो पंजाब से इतनी ज़्यादा डिटर्मन होती है कि हम बाकी जगहों को इतनी अहमियत नहीं देते, ये बहुत ज़्यादा होता है। इस सिलेक्शन में भी यही है कि अगर आप यू नो देखें तज्जिए जो हो रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर पंजाब की सियासत के बारे में ही होते हैं। मतलब कि हम ज़्यादा ना तो तफसील से देखते हैं ना हम सहाफ़ियों को भी, एंड दैट इंक्लूड्स माई सेल्फ, इतना मालूम होता है कि यू नो बलूचिस्तान में कौन क्या है, कौन सा हलका है, सिंध इज़ लाइक दिस लिटिल ब्लैक बॉक्स, यू नो कराची हम डिस्कस करते हैं, कराची से आगे सब एक वेग से, अच्छा ये इंटीरियर सिंध है और वहीं सियासत ख़त्म होके शुरू होके ख़त्म हो जाती है। तो ये बायसेस हैं, बायसेस कहें या हम ये कहें कि जहाँ जहाँ फैसले होते हैं हम सिर्फ उसको ही तवज्जो देते हैं।
बट बलूचिस्तान में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो बलूचिस्तान के लोग भी सोच रहे होते हैं ये कौन है और ये कहाँ से बन गया। सो आई डोंट ब्लेम यू फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान से कौन जीत रहा है।
ये है ये भी बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान में मतलब कि ये जो बलूचिस्तान की अब लीडरशिप है जिसको हम कहते हैं, जो इस वक्त सेनेट की चेयरमैनशिप भी उनके पास है, वज़ीर आज़म की कुर्सी भी उनके पास है, और मगर ये
इंटीरियर मिनिस्ट्री भी थी, अभी
इंटीरियर मिनिस्ट्री भी थी, मगर ये कौन है, ये कहाँ से आए, इनकी एक करियर ट्रिजेक्ट्री आपको पंजाब के बहुत से सियासतदानों की मालूम होगी, इनकी हमें नहीं मालूम। हम दिलचस्पी भी शायद नहीं लेते, अब वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं तो भी हमें मालूम नहीं होता। सो ये है बिल्कुल सही।
सो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग दिस पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली वो सिंप्लीफाई भी करना होता है, रेटिंग्स भी चाहिए होती है, नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल या जरदारी, वो वर्सेस वर्सेस उसमें होता है जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है। इज इट ऑल्सो नॉट अ फेलियर ऑफ आर सिस्टम के अक्सर लोग कंपेरिजन्स कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं कि 2008 में जो लोग पीपीपी की टिकट पे जीते वही लोग 2013 में पीएमएलएन की टिकट पे जीते, वही लोग 2018 में पीडीआई की टिकट पे जीते, तो तब्दीली कहाँ है? इवन पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स थे वो सारे वो लोग थे जो पहले सियासत में आ चुके हैं, तो वेयर इज़ द तब्दीली?
वन यू से तब्दीली, डू यू मीन तब्दीली जो सियासी तौर पे होगी या तब्दीली जो ऑन द ग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक लेवल?
सेम चीज़ है ना, जो लोग 10 साल से बैठे हैं वो ऑन द ग्राउंड क्यों तब्दीली करेंगे जस्ट बिकॉज उनका पार्टी सिंबल बदल गया?
देखिए दो चीज़ें हैं, अगर हम सिर्फ सियासत की जो आप बात करें वो बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में उसमें मसला मैं बताऊं सहाफ़त में क्या होता है, जर्नलिज्म में क्या होता है, हम अभी भी वही सियासत उसी तरीके से कवर कर रहे हैं या उसका एनालिसिस कर रहे हैं जैसे हम आज से 20 या 25 साल पहले करते थे। इंडिया को देख लें, बाकी आप वेस्ट को देख लें, इलेक्शन की कवरेज इतना एक साइंटिफिक प्रोसेस हो गया है। आप डेटा को देखते हैं, आप मैप्स को देखते हैं, यू नो यू लुक एट स्विंग सीट्स, स्विंग कंस्टिट्यूएंसीज, यू कैन वर्क विद दैट डेटा, तो आप उसकी बेसिस पे सारा फिर अपना एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे आपने कहा कि हम ये डेटा डिवेलप ही नहीं कर पाते पार्टली बिकॉज हम किसी को, हम स्विंग सीट कहाँ से बनाए, क्योंकि वो बंदा जो होता है जो पिछली दफ़े सीट जीतता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरा धड़ा इधर आ जाता है। सो मुझे लगता है कि उसका नुकसान एक लेवल पे जर्नलिज्म को भी हुआ है कि वी नेवर कैन डू डेटा एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस कि यू नो PMLN का वोट इतना बढ़ा या PPP का इतना कम हुआ या PTI का बड़ा है या कम हुआ है, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। देर इज़ नो ऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशन और अकरेंस हेयर, इट्स ऑल सो ऑर्केस्ट्रेटेड एट सम लेवल कि हर किसी को लगता है कि इसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो आप अगर हम सोशियो इकोनॉमिकली देखें ऑन द ग्राउंड, तो मुझे लगता है फ़र्क तो पड़ा है, और फ़र्क जो है वो वेरियस रीजन्स शायद इतना एडवांस्ड नहीं है, बट नज़र तो हमें कहीं ना कहीं वो चेंज आ रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम तब्दीली की बात, आई अज्यूम यू मेंट पार्टली PTI
पार्टली,
अब जैसे अगर हम KP को देखें खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में उन्होंने पहला इलेक्शन जीता, तो और उसके बाद 2018 में भी जीता। सो इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज इट एट अ सोशियो इकोनॉमिक लेवल, व्हाट आई वुड से, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड द फैक्ट कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यू नो बहुत सी बातें जो हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हम करते हैं बिकॉज मेरे पास इतना तो डेटा है नहीं, मैं हार्ड उस तरह एनालिसिस तो करती नहीं कि व्हाट हैपन्ड। यही जो यूथ बल्ज है, दिस हैज़ बीन एट वर्क फॉर सम टाइम, हम अब इसकी बात करते हैं बट ये है तो सही। दूसरा ये था कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रा सस्टेनेबल लेवल पे कुछ साल के लिए हुई, उससे भी तब्दीलियां आईं। और तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो पॉलिटिकल आपकी एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलीट थी वो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत डिस्ट्रॉय हुई। ख़ासतौर पर अगर आप ANP को देखें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टू सम एक्सटेंट, तो यू नो एक के बाद दूसरा वाक़या था कि उनकी जो लीडरशिप थी उसको टारगेट किया गया। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को व्हेन यू पुट इट टुगेदर टू सम एक्सटेंट यू रियलाइज कि एकदम वहाँ हमें ज़्यादा तेज़ी से वो तब्दीली नज़र आई या उसका इम्पैक्ट हमें सियासत पे नज़र आया, बिकॉज वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी काइंड इज़ द फास्टेस्ट वे टू ब्रिंग चेंज टू अ सोसाइटी। तो जब आप एक ट्रेडिशनल पोलिटिकल एलीट को वैसे ही यू नो निकाल देते हैं तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा सियासत के ऊपर, वो पड़ा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई खैबर पख्तूनख्वा में, ऑफकोर्स इनक्वालिटी बढ़ी बट इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ में हुई, तो उसका आपको एक इम्पैक्ट नज़र आया। शायद वो एक नई इलीट भी है, नई पॉलिटिकल इलीट भी क्रिएट हुई स्वात जैसे इलाकों में, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप देखें तो वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इलीट नहीं है, तो फ़र्क पड़ा। अब मुझे लगता है कि पंजाब में वो जो शायद उस एक्सटेंट तक तो नहीं हुआ बट वो एक सोशियो इकोनॉमिक तब्दीली भी थी, उसके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट मिला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मगर वो सपोर्ट उससे पहले PMLQ को भी मिल चुका है एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। बट देयर आर ऑलवेज डिफरेंट फैक्टर्स, उसके अंदर लीडरशिप का एक अपना भी रोल होता है, वो फ़र्क मेरे ख्याल में चौधरी बिरादरान और इमरान खान में था, मगर वो एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज ज़रूर था जिसको जिसकी वजह से इमरान खान को जो ग्राउंड लेवल से एक सपोर्ट मिला है वो अब हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स।
इसमें हम लेवल प्लेइंग फील्ड सारा दिन टीवी पे हो रहा होता है, बट 2013 में ये किसी ने डिस्कस किया था कि लिटरली बॉम्ब फट रहे थे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे है कि दो पार्टी कि लीडरशिप को आप कत्ल कर रहे हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ऑब्वियसली, वो ब्लैक एंड वाइट कोई चीज़ नहीं हो सकती, बट ये कितना, वो जो पर्सनैलिटी की आप जिक्र कर रहे हो कितना बड़ा फैक्टर है। इमरान खान सेज़ कि मैं तो अगर खंबे को भी खड़ा कर दूँ पीटीआई के बैट, आई मीन साइड रिफ्यू मान सको ऑब्वियसली, तो वो जीत जाएगा, मतलब मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है, ऑब्वियसली विल टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट हाउ बिग अ फैक्टर हैज़ नाउ इमरान खान एज अ पर्सनैलिटी बिकम, इज इट इनफ टू ब्रेक दीज हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेबल पॉलिटिक्स?
देखिए, वो अब इमरान खान ने जो बात की थी या कुछ जो लोग तज्जिया भी करते हैं, वो अगर एक अब रिलेटिवली फेयर इलेक्शन हो रहा होता तो हम उसको जज करते। ये जो खंबे की बात है, ये हमने भुट्टो साहब के इलेक्शन में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन में देखा था ना, बट वो इलेक्शन फिर एक रिलेटिवली फेयर इलेक्शन हुआ था, तो इट वॉज़ यू वर एबल टू जज इट। असर्शन तो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, उसको अब हम जज कैसे करें? वो अगर इलेक्शन ऐसा होता तो हम जज कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो मेरे ख्याल में अब इतना फेयर नहीं होगा, बट फिर भी देखेंगे हम। अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि शहरों में, अर्बन एरियाज़ में ख़ास तौर पे, वी माइट बी एबल टू सी दैट फिनोमिनन एट वर्क, लेट्स सी। बट माई काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट वुड बी के द काइंड ऑफ क्रैक डाउन दैट वी हैव सीन ऑन द पार्टी हैज़ अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिश दैट असर्शन विदाउट एनी एविडेंस। इफ यू नो, जो क्रैक डाउन पिछले दिनों में पीटीआई पे हुआ है, वो इतना अनयूजुअल है, आई वुड से। इसका ये कहने का मतलब, वो ये अनप्रेसिडेंटेड में उस तरह नहीं इस्तेमाल करी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्तेमाल करते, मैं इसको इस मायने में इस्तेमाल करी हूँ कि एटलीस्ट मेरे ख़्याल में 99 के अंदर या 2018 के अंदर हुई, बहुत ज़्यादतियाँ हुई, बट इस लेवल की मैंने नहीं देखी, इस लेवल की इस तरह मैंने नहीं देखी कि आप जहाँ चले जाएँ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ही या बैनर्स ही नहीं नज़र आते। उनके कैंडिडेट्स कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए भी बहुत सारी जगहों पे उनको मसाइल हो रहे हैं, जिस तरह यू नो पॉलिटिकल लीडर्स को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई या इंटरव्यूज़ करवाए गए, तो जब आप इस तरह के वाक़यात देखते हैं ना, तो उससे जो परसेप्शन क्रिएट होता है वो ये होता है कि यार पता नहीं इन्होंने क्या कर लेना था इलेक्शन में, जो ये सब कुछ किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो इस्टेब्लिश होना था इलेक्शन में। इस वक्त तो चाहे मैं जो मर्जी कहूँ, चाहे इमरान खान जो मर्जी कहें, देयर ऑल असर्शंस, ये तो असर्शंस ही है ना, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि जी वो सर्वे का रिजल्ट ये आ गया तो ये इस्टेब्लिश हो गया। नहीं, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये हमें देखना है। मगर वो इलेक्शन में तो अब प्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन में वो इतनी ज़्यादा उसको हैम्पर कर दिया या हिंडर कर दिया एक पोलिटिकल पार्टी को, बट कमबख्त मारे ये जो इतनी ज़्यादा हुई है अनलेवल ऑफ द प्लेइंग फील्ड, तो उससे लोगों को लगेगा ओहो यार ये तो बहुत ही कोई कमाल इन्होंने कर दिया।
परसेप्शन बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम अज्यूम करें कि इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट जो डेटा पे कर रही है, ठीक है वो परसेप्शन स्ट्रांग हो जाए, बट वो लोग भी तो इतने अननेसेसरी आउट ऑफ द वे जाकर, कि वही बात है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग गिरानी है, अब जाके आप न्यूक फेंक दें, मतलब पागल वागल तो नहीं हो गए? बिल्डिंग अगर गिरानी है तो आप बुलडोजर से भी कर सकते थे, एंड दिस इज़ हाउ देयर डीलिंग विद एवरी इशू। द प्रॉब्लम माइट नॉट बी एज बिग, बट जस्ट उनका रिएक्शन इतना बड़ा, एंड वो नाइन्थ में आई गेस इज ह्यूज फैक्टर, दे टेक इट एज देयर 9/11, तो शायद वो भी एक फैक्टर है, इट माइट नॉट बी के इसके बगैर नहीं हो सकता था। अगर स्पेसिफिकली अगर हम परवेज़ खटक को देखें, अब वो एक क्लासिकल पॉलिटिशियन, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कर सकते हैं। डू यू हैव एनी डेटा, आर यू फाइंडिंग आउट एनी न्यूज़ के क्या पीटीआई के बगैर वो जीत सकते हैं अब, या वो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो क्लासिक उनकी एबिलिटी थी, वो विदाउट पीटीआई नहीं चल सक रही?
देखिए, एनेक्डोटली देर आर स्टोरीज, आई मीन देर सर्वे कंस्टिट्यूंसी लेवल का तो मैं नहीं कोई कह सकती कि मैंने नौशहरा की कंस्टिट्यूंसी का कोई सर्वे देखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में बहुत स्ट्रॉन्ग एक यू नो वो है, उनकी पोजिशन है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब नौशहरा एग्जैक्टली में क्या होगा उसके लिए, एज आई सेड कंस्टिट्यूंसी लेवल का तो नहीं देखा, बट इट्स एन अपहिल टास्क फॉर परवेज़ खटक, वो वहाँ के एक इलेक्टेबल हैं। मगर वो एक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेबल थे, उनको नेशनल लेवल की फेम या लीडरशिप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही मिली। अगर वो 2013 में उनके चीफ मिनिस्टर ना बनते तो बहुत से लोगों को तो उनका नाम भी ना मालूम होता। वो एक ट्रेडिशनल सियासतदान अच्छे हैं, उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा, मगर इस वक्त जो माहौल है खैबर पख्तूनख्वा में और जनरली एक बना हुआ है, उसके अंदर क्या वो अपनों शहरा से अपनी सीट निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, इस वक्त मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट। और वही वाली बात, कमिंग बैक टू दैट आइडिया ऑफ परसेप्शन, कि कई दफ़े यू नो ओवर प्ले इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें मसला ये है कि अब वो जीत भी गए ना तो सवाल रहेगा उस जीत के ऊपर कि जी इस वक्त में खैबर पख्तूनख्वा में कैसे किसी ने सीट निकाल ली, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए हुए। अगेन यू नो
केपी में तो जो भी गवर्नमेंट आएगी उनकी लेजिटिमेसी तो क्वेश्चन मार्क पे ही रहेगी।
मेरे ख्याल में सेंटर में भी जो हुकूमत आएगी उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क होगा।
सेंटर की तो फिर जोड़ तोड़ हो जाती है ना। अब लेट्स से अगर सिंध में आएगी, सिंध में वैसे ही पीटीआई ने नहीं जीतना था, बलूचिस्तान में वैसे ही इलेक्शन नहीं होते, देर यूज टू इट, दे लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड वो जिस तरह जेम्स फ्रेंको की मीम है कि फर्स्ट टाइम, तो उनको तो पता है यही होता है। पंजाब में पीएमएलएन जलसे तो बहुत बड़े कर रही है, तो अगर वो जीत गए सियालकोट से, लाहौर से, नारोवाल से, सरप्राइजिंग नॉट एट ऑल, तो इन सब गठजोड़ से जो गवर्नमेंट बनेगी चल तो सकती है। वो लेजिटिमेसी पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट की क्वेश्चन होती है।
हाँ हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो नहीं चल सकती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेजिटिमेसी जो है वो 2018 में भी क्वेश्चन हुई थी, वो इस दफ़े भी क्वेश्चन होगी। उस दफ़ा उस वक्त वो पंजाब की या सेंटर की हुकूमत की क्वेश्चन हुई थी, इस दफ़े शायद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सेंटर, वो क्वेश्चन होगी लेजिटिमेसी, स्पेशली बिकॉज जैसे उस वक्त भी था, एक जब आपके पास अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग जमात होगी जिसको लगेगा कि यू नो हमारा मैंडेट हमसे चुराया गया है, तो कहीं ना कहीं जब भी उनको मौका मिलेगा ये बात होगी और लोग भी सवाल उठाएंगे। यू नो अगेन अ लॉट ऑफ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन, बट परसेप्शन पॉलिटिक्स इज़ अबाउट परसेप्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो उसमें वो यही हो जाता है, वो 2018 में भी ये था। और देखिए पाकिस्तान में वो परसेप्शन या लेजिटिमेसी का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ बातों तक नहीं रहता। 2018 में हुकूमत बन गई, उसके बाद यू नो मौलाना साहब धरना लेके आ गए, उसके बाद कोविड का वक्त आया तो ज़रा चलो खामोशी हुई, उसके बाद पीडीएम बन गई, उन्होंने बड़े जलसे किए, फिर खामोशी आई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो एक हलचल जो है पॉलिटिक्स में रहती है, और वो हलचल मेरे ख़्याल में इसलिए भी रहती है क्योंकि हमारी जो एक पॉलिटिकल एलीट है या पॉलिटिकल मिलिट्री एलीट है, दे हैव नॉट अग्रीड ऑन द रूल्स ऑफ द गेम। बाय रूल्स ऑफ द गेम हम अमूमन ज़्यादातर ममालिक में हम यही कहते हैं ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द रूल्स ऑफ द गेम, बट उससे बाकी सारी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो अनसेड या अनरिटन होती हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रूल्स ऑफ द गेम रिजीम। हमारा उस पर फैसला नहीं हो रहा कि वो हुकूमत कैसे बनेगी, वो हुकूमत लोगों के वोट से बनेगी, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनेगी, फिर जब वो बन जाएगी तब भी वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो 2008 से भी आप देखें हुकूमत एक दफ़े बन जाती है, इलेक्शंस पे सवाल उठें या ना उठें 2008 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, मगर उसके बाद भी वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती क्योंकि हर वक्त ये गुफ्तगू हो रही होती है कि आज गई या कल गई, या वज़ीर आज़म को कुछ हो जाएगा, या अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसके नंबर्स में कोई गड़बड़ हो जाएगी। ये आइडिया कि एक दफ़े अगर हुकूमत बन गई है तो ये 4 या 5 साल मुकम्मल करेगी अपने, उस पर हमारी अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आपस में, और उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रहती है। तो जब इलेक्शन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए तो वो एक एडेड उसमें प्रॉब्लम आ जाता है।
आई गेस सोशल मीडिया के होने से परसेप्शन मैनेजमेंट तो अब इम्पॉसिबल है, बट इन टर्म्स ऑफ मास मीडिया हाउ मच ऑफ द परसेप्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड राइट नाउ मास मीडिया पे या टेलीविज़न पे?
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान में जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी ना, इट वॉज लॉन्ग लॉन्ग टाइम गो, तो उस वक्त कोई टेलीविज़न नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, सिर्फ अखबार थे। तो मुझे अभी भी याद है, ये मेरे ख़्याल में ज़मीर न्याजी साहब की किताब में किसी का एस्से था, वहाँ से मैंने ही पढ़ा था। बट इट्स, हम जर्नलिज्म नहीं करते, हम गरिला जर्नलिज्म करते हैं कि आप जैसे इंसर्जेंसी के टैक्टिक्स होते हैं ना, कि आप अटैक करते हैं, फिर आप जाके छुप जाते हैं, फिर आप कहते हो अच्छा नीमे नीमे चलिए टिल द नेक्स्ट टाइम वी गेट अ गुड मोमेंट। सो दिस इज़ हाउ यू डू जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। एंड बट यू नो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न आया तो इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई, क्योंकि अखबार में ज़रा ठहराव था, इट वॉज़ ईजियर टू मैनेज फॉर वेरियस रीजन्स। टेलीविज़न ने फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज की, फ्रीक्वेंसी जब चेंज हुई तो उसके अंदर शोर भी ज़्यादा आ गया। अच्छा, उसको भी मैनेज करने के नए तरीके सीख लिए लोगों ने, और बड़े अच्छे सीख लिए। अब जैसे आपने कहा, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब वो सोशल मीडिया जो है वो अभी तक वाइल्ड वेस्ट है, वो समझ नहीं आ रहा किसी को भी कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, और उसकी तो भी हमें फ्रंटियर्स ही नहीं पता ना कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये ख़त्म कहाँ से हो रहा है। बिकॉज एवरी डे अ न्यू फ्रंटियर ओपन्स अप। वी थॉट इट वाज ट्विटर, आई मीन आई सपोज वी थॉट इट वाज फेसबुक, देन वी थॉट इट वाज ट्विटर, देन इंस्टाग्राम, देन टिकटॉक। सो देयर न्यू फ्रंटियर्स दैट आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, To me, two things have happened. One, the state has figured out how to control the mainstream media. But unfortunately, वो control ऐसा हुआ है कि television की credibility ख़त्म हो गई है, mainstream media की credibility ख़त्म हो गई है। तो social media शायद इतना बड़ा जानवर भी ना बनता अगर mainstream media की credibility बेहतर होती।
इन अमेरिका में भी नहीं है मेनस्ट्रीम मीडिया की, वहाँ पे उस तरह का शायद कंट्रोल नहीं है, बट ये जो फेक न्यूज़, पीपल डोंट बाय व्हाट्स सेड ऑन द मेनस्ट्रीम मीडिया इन द यूएस टू द एक्सटेंट के वो फाउची जब आके कह रहे थे भाई कोविड वैक्सीन लगा दो, बिकॉज वो सीएनएन पे आके कह रहे थे, पीपल सेड ये तो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान।
मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मुझे जिस चीज़ का पता है मैं उसकी बात करूँगी। So, for example, you're absolutely right, and you're going back to COVID. I would just use the Palestine example to say कि mainstream media की credibility वहाँ कितनी impact हुई है, और उसकी वजह से मेरे जैसे एक इंसान की dependence social media पे बढ़ी है। वो और वो इसीलिए बढ़ी है ना, क्योंकि जब मैं for example you know Guardian रोज़ देखती हूँ, जब मैं अखबार पढ़ती हूँ तो आई लुक एट द गार्डियन एवरी डे। सो बट व्हेन द पैलेस्टाइन इशू बिगैन, जब गाज़ा की इन्वेजन हुई है, तो मुझे उनकी कवरेज नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं पढ़ना था वो, तो आई टर्न टू सोशल मीडिया। आई वुड अर्लियर नॉट हैव डन इट।
इसमें अगर समबडी हुज़ बीन एन एडिटर, यू अंडरस्टैंड दीज इशूज, मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं बोलूँ अच्छा ठीक है मेनस्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरे दिमाग में भी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, मुझे भी नहीं समझ में आता अच्छा इन्फॉर्मेशन को कैसे, मैं बस सोशल मीडिया पे जाऊँ एंड आई एम गेटिंग दिस टायरेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। एज कंज्यूमर ऑफ न्यूज़, एज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन न्यूज़, आप क्या कहेंगी कि सोशल मीडिया पे जाकर जब ये पहाड़ देखते हैं, फ्लड देखते हैं न्यूज़ का, हाउ डू दे डिसर्न व्हाट्स रियल?
अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, दैट्स द क्राइसिस। So there are two things at work, na? And as I said, एक polarized environment है, आपने अमरीका का भी एग्जाम्पल दिया, मैंने उस वक्त फ़ौरन उसमें फ़लस्तीन का दिया, polarization ही है ना, कि you're coming at an issue from such different angles के लगता है कि common ground ही नहीं है, एक ये चीज़ है। दूसरा उसकी वजह से फिर obviously credibility का crisis बन जाता है, जिस you know मैं भी मानती हूँ, मैं आई मीन एज आई सेड ऑन पैलेस्टाइन, देर इज़ एन अप्रोच टू इट सॉर्ट ऑफ यू नो दैट आई डोंट वांट टू बिलीव दैट। सो यू डू कम फ्रॉम इट, बट यू नो द सेकेंड थिंग ऑल्सो इज एंड आई फील दिस, कि जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं, नई चीज़ है, दिस ऑलवेज सो मच डिस्ट्रस्ट ऑफ एनी थिंग न्यू। सो for example, when the printing press came, what was the first reaction when people, said ki hum apni interpretation chhapenge Bible ki? My sort of history is a bit not too good, so I'm scared of taking the names ki main galat na le lu. But Martin Luther, galban. So, you know, when he said ki ye interpretation hogi, to jo power center tha church ka, उनका तो पावर इम्पैक्ट हो रहा था ना, तो उन्होंने तो कहना था ये बिल्कुल सही नहीं है. तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर और पावर पॉलिटिक्स भी आ जाती है इसके अंदर. इट्स नॉट नेसेसरली अ केस ऑफ पर्हैप्स हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट इट इज
हु इज इन कंट्रोल.
इट्स अबाउट पोलराइजेशन, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट समबडी हु हैज द पावर, दैट पावर इज बीइंग चैलेंज्ड बाय टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. It has happened in the past. और वो जब challenge होता है तो जो जिसका challenge हो रहा है उसके लिए जो challenge कर रहा है वो फितना है या वो problem है जो chaos create कर रहे हैं, but इधर वाले तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनो.
इसमें ये दुनिया है, हमने बता दी ये मसले हैं, मसाइल हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिक कर देते हैं, तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल होना चाहिए और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली क्या मेनस्ट्रीम मीडिया फेल कर रहा है या नहीं कर रहा इन फुलफिलिंग दिस रोल?
आई थिंक कम्प्लीटली फेल कर रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया से अगर आपकी मुराद अखबार और टीवी चैनल्स हैं. मेरे ख्याल में हम बिल्कुल फेल कर रहे हैं, हम बहुत सारे लेवल्स पे फेल कर रहे हैं. एंड आई सी दिस एज अ जर्नलिस्ट, सो रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है, देर नीड्स टू बी मोर रिपोर्टिंग. हमारी देखिए ओपिनियन देना आसान होता है, सस्ता होता है और उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर रिपोर्टिंग बेहतर करेंगे तो शायद हमारी भी यूटिलिटी बेहतर होगी और हम लोगों को बेहतर इन्फॉर्म करेंगे ना. दूसरा काम मेरे ख्याल में जर्नलिज्म का काम होता है, आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड, वी आर सपोज टू टेल द पीपल्स स्टोरी, वी आर देयर टू सर्व द वीक एंड द पावर, द पावरलेस. तो हम तो हर वक्त मतलब कि इमरान खान ने क्या कह दिया, नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, आप देखें अगर टीवी का न्यूज़ बुलेटिन तो 20 मिनट तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वो बता रहे होते ना कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा. वेयर आर द पीपल? सो वी आर नॉट टेलिंग द स्टोरीज. हमारा काम तो है कि हम लोगों के बारे में रिपोर्टिंग करें, उनकी कहानी बताएं. तो उनकी तो कहानी आती आखिरी 5 मिनट में है, सारा वक्त तो हम सियासतदानों की स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं. तो बहुत ये सबसे बड़ा फेलियर है. मगर रिपोर्टिंग में एफर्ट लगता है, रिपोर्टिंग में पैसे लगते हैं, रिपोर्टिंग में आपको लोग हायर करने पड़ते हैं. उसके अंदर ये नहीं होता कि मेरे जैसे दो लोग बिठा दिए स्टूडियो में और वो बक बक करते रहे. जो 7 बजे से हमने बोलना शुरू किया हम रात के 12 बजे तक बोलते रहते हैं. तो ये हम आई मीन दिस इज़ वेयर वी आर फेलिंग. न्यूज़पेपर्स में भी अब वो रिपोर्टिंग नहीं होती जो आज से 10-15 साल पहले होती थी. उनका भी फ्रंट पेज पे यही कुछ होता है, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया.
इसमें जब एजेंडा सेटिंग हो रही होती है, ये मेरा एंटरटेनमेंट में कॉन्स्टेंट पड़ा रहता है चैनल से कि सर लोग देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं, हम लाइक आप बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं. अगर इस मुल्क में फ्लड्स आ जाते हैं, 2/3 सिंध अंडर वाटर होता है, 1/3 बल्तिस्तान अंडर वाटर होता है और आप टीवी चलाएं तो खान साहब तोशाखाना में मोटरवे पे आ गए, लाइव कवरेज आ रही है, आखिरी के 2 मिनट में एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी. इफ़ द न्यूज़ चैनल्स टर्न अराउंड एंड से भाई लोग देखने ही नहीं चाहते फ्लड में कितने लोग मरे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं, उनका इंटरेस्ट ही खान साहब के मोटरकेड में, या डू यू फील देयर बीइंग डिसइंजेन्युअस व्हेन दे से दैट एंड दे शुड बी सेटिंग द एजेंडा?
वेल ऑफ कोर्स दे शुड बी सेटिंग द एजेंडा. एंड ये कहना कि लोग देखना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में कोई बहुत एक्यूरेट रेटिंग सिस्टम है? तो फिर ये जब बात करते हैं कि लोग देखना चाह रहे हैं तो रेटिंग सिस्टम ये एक्यूरेट नहीं है, तो ये साइंटिफिकली तो नहीं कह रहे, ये तो आप हमें वैसे ही बता रहे हैं ना. तो ये और ये सस्ता तरीका है टीवी करने का, लाइव कवरेज, हर चीज़ की लाइव कवरेज. मैंने कहा ना कि रिपोर्टिंग में पैसा लगता है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ पाकिस्तान आई मीन प्रॉब्लम दैट्स लिमिटेड टू पाकिस्तान, द वर्ल्ड ओवर वी हैव दिस इशू. But it's very acute here, and partly it's acute is because you have a small economy and you're running 40-50 channels on it. why should there be 40-50 channels if the US can only afford what 3-4 news 24-hour news channels?
लोकल बहुत ज़्यादा है ना,
बेशक लोकल होंगे भाई,
शहर का चैनल है,
नेशनल लेवल के तो कम है ना, नेशनल लेवल के उनके कितने हैं, यूके के अंदर कितने हैं नेशनल लेवल के 24-hour न्यूज रिपोर्टिंग चैनल, तो हमारे पास 40-50 कैसे हैं, उनकी हमारी क्या इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो एक तो मसला ये है कि इकोनॉमिक मॉडल बहुत ख़राब है यहाँ का, और दूसरा ये है कि जब इतने ज़्यादा चैनल्स होंगे तो सबके बजट थोड़े होंगे, तो फिर आप यही करेंगे, क्योंकि सबसे सस्ता तरीका टीवी के आवर्स फिल करने का ये है कि लोगों को मेज़ पे बिठाएं, 3 कैमरे लगे हुए हैं, जो आपकी यू नो सो योर बेसिक कॉस्ट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड यू रन इट ऑन दैट। टीवी की जर्नलिज्म करने पे बहुत पैसा खर्च होगा अगर आप लोगों को फील्ड में भेजेंगे, आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ तो वो लाइव शो भी इसलिए करते हैं कि एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी।
तो इसमें क्या मॉडल, हम किस तरह, जो बड़े हमारे सेठियाँ कंपनीज हैं, सेठियाँ चैनल्स हैं, वन कैन से अच्छा भाई अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कि हेज अगेंस्ट योर बेट्स हो जाए। छोटे चैनल हैं, आई डोंट नो हाउ दे ट्राइंग टू बी इवन प्रॉफिटेबल या एज अ बिजनेस इंटरेस्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो क्या शुड इट बी पब्लिक फंडेड, शुड इट बी subscription model, should be some journalists getting together doing it themselves, how to, what's the better model?
Look, keeping in mind the state of journalism the world over, I think we're all still trying to discover that model. जो एक पहले अखबार का मॉडल था वो और टीवी का मॉडल था वो तो अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो सारी दुनिया में इस वक्त ये एक थोड़ा सा क्राइसिस तो है ही सही, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है, सब ट्राई करके देख लिया यू नो, पर हमारे यहाँ तो खैर कोशिश ही नहीं हो रही। मेरा तो मसला या शिकायत ये है कि यहाँ कोशिश ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारा शुरू दिन से जो मॉडल था वो स्टेट डिपेंडेंट था कि गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे तो चैनल्स और अखबार चलेंगे, वो अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, विच इज़ ऑल्सो वाई इतने ज़्यादा आ जाते हैं बिजनेस इंटरेस्ट को, जैसे आपने कहा प्रोटेक्ट करने, या इतने ज़्यादा हैं जिसमें 6-6 महीने 8-8 महीने वो तनख्वाहें नहीं देते बट चलाए चले जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना कि और इंडस्ट्रीज़ में ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में ये क्यों होता है कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी जा रही, कि जी बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलाए चले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी? सो हमारा मॉडल जो है, एंड इट्स ऑलवेज बिन लाइक दिस, वो अब यू नो बढ़ता चला जा रहा है उसका प्रॉब्लम, कि स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, और फिर अच्छी जर्नलिज्म भी नहीं हो सकती जब आपके पास कि इसके स्टेट के ऊपर डिपेंडेंस होगी, तो फिर वो आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा डाल देंगे कि ये क्यों कह दिया, ये क्यों नहीं कहा। आप नोट करें कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो एंकर्स चेंज हो जाते हैं, ब्यूरो चीफ्स चेंज हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ बिकॉज यू नो
आर द लेवर्स दैट डायरेक्ट के चलें जी इनको फारिग करें,
और आपको नज़र नहीं आता
इतना ब्लेटेंट? बस
देखिए ब्लेटेंट तो या तो नहीं इतना होता, पर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमतें तब्दील होती हैं तो चेहरे तब्दील होते हैं ना, तो फिर वो सिर्फ सामने के नहीं होते, वो पीछे के भी कुछ हो जाते हैं, बट एक वो है तो सही। So, but I mean, I don't also want to make it sound too simple, because if you look at the entire region, agar hum India ko bhi dekh lein, Pakistan ko bhi dekh lein, journalism mein ek crisis aaya hai, jo state ke saath ek taluk tha ya ek relationship thi, wo kabhi bhi bahut aasan nahi thi, magar uske andar jo journalism thi ya acche sahafi the, unko sideline kiya gaya hai. India mein bhi, if you look over the past, you know, decade or so, जो पुराने प्रोफेशनल सहाफ़ी थे उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल गए हैं और उनकी जगह नए लोग आ गए हैं। सो इट हैज़ हैपन्ड देयर ऑल्सो, स्टेट के साथ रिलेशनशिप ज़रा मुश्किल हुई है, वहाँ भी सेंसरशिप वहाँ भी बढ़ी है, वो भी अब ज़्यादा शिकायत करते हैं, जो हमारे यहाँ तो एक तारीख रही है, वहाँ इट्स बिन अ डिफरेंट थिंग, सो वहाँ भी ये हुआ है। बट हमारा मॉडल मुझे लगता है कि इस particularly problematic, जिसके अंदर you know ये सब channels होते हैं, but funding जो है वो इतनी state से linked है कि उस पर pressure बहुत ज़्यादा आ जाता है, और उससे मुझे लगता है कि पिछले चंद सालों में तो बहुत reporting जो है उसने बहुत suffer किया।
इसमें somebody who does a show on mainstream TV, आप पर्सनली क्या फेस करती हैं स्टेट रिपरकशंस या स्टेट कुछ डायरेक्शंस आते हैं क्या होता है?
ऊपर हमें मैनेजमेंट से पता चल जाते हैं, सबके ऊपर प्रेशर्स हैं, तो यू नो जो भी होता है वो पैगाम पहुंच जाता है कि ये व्हाट आर द रेड लाइंस दैट यू नो दैट यू डोंट हैव टू क्रॉस और यू कांट क्रॉस, लेट्स पुट इट दिस वे, इफ यू वांट टू कीप अ जॉब एंड वी ऑल वांट टू यू नो हैंग ऑन टू अ जॉब बिकॉज वी हैव बिल्स टू पे.
आपकी जो एक जनरल गाइडलाइंस, तो वो सबको ही पता है मुल्क में ये हैं, ये स्पेसिफिक टाइम्स में स्पेसिफिक गाइडलाइंस, लाइक वाज इट एक्चुअल गाइडलाइन के इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते?
अच्छा, वो जो इमरान खान वाला था ना वाकया, वो गालबन तब हुआ व्हेन आई वाजंट हियर, आई वाज लकी इनफ दैट आई वाज अवे इन द समर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, तो ये वाकया तब हुआ था, तो मैंने भी इसका पढ़ा था. मैं जब वापस आई और मैंने शो करना शुरू किया तो यू नो कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते, बिकॉज ऑब्वियसली कौन सा स्क्रिप्टेड शो कर रहे होते हैं, तो कभी नाम ले लेते हैं कभी नहीं लेते, गुजर ही जाता है, कोई इतना खास मसला नहीं होता. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर ऑल चैनल्स. द गाइडलाइंस विल वेरी, देव ऑलवेज वेरीड, सम प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज देयर एंड देयर अनसेड. फॉर एग्जांपल, यू नो व्हेन यू वांट टू रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो उसके लिए कोई ख़ास ऐसा वक्त नहीं था कि वो कभी भी बहुत आसान था. यू नो एक आप जब माशरे में रहते हैं तो उसकी अपनी रेड लाइंस होती हैं जो आपको हर वक्त पता होती हैं, वो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते. माइनॉरिटी के राइट्स पे बात करना है तो किस हद तक कर सकते हैं, कहाँ आपको खुद ही लाइन ड्रॉ करनी है, सेल्फ सेंसरशिप हो जाती है, बट करनी पड़ती है, ज़िंदा भी रहना है ना. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, गरिल्ला जर्नलिज्म होती है, कभी ज़रा ज़्यादा फ्रीडम होती है कभी कम होती है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स ओवर ईयर्स और मंथ्स, इट कैन जस्ट बी डेज एंड वीक्स एंड डेज एंड वीक्स ऑल्सो. यू नो दैट पेंडुलम स्विंग इज़ नॉट नेसेसरली वन दैट goes ओवर ईयर्स और मंथ्स और वट एवर, समटाइम्स इट्स जस्ट डेज लॉन्ग.
सो क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, अरे यारी बातें ज़रूरी हैं, मुश्किलें करना कि खो भी जाएँ और नौकरी भी बच जाए?
हमेशा से करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना उसकी भी तो कोई वजह है. सो बट बात कर भी लेते हैं. देखिए पाकिस्तान में ना अभी भी हम शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं उसका हिस्सा हूँ, पर हम अभी भी, हमारा एक बड़ा जो खित्ता है और जो जिस खित्ते के में हम रहते हैं ना, ये कोई निराला ही खित्ता है. मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम टीवी पे बैठ के कहते हैं आजकल जी बड़ी सेंसरशिप है. सर देखना, ये वो गेस्ट आए हुए ना पॉलिटिशियन, उन्होंने कोई बात की, सर क्या कर रहे हैं, आपको पता है ये टीवी पे हम नहीं कह सकते. अब आप ईरान में या सऊदी अरेबिया में बैठे हो ना, तो आप टीवी पे बैठ के ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी सेंसरशिप, आप तो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम है. तो ये ना, ये मुझे लगता है कि दिस इज़ यूनिक टू साउथ एशिया. देर इज़ समथिंग ट्रूली आर्ग्यूमेंटेटिव अबाउट अस एज अ रीजन. वो जो अमर्त्य सेन की किताब थी ना, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, मुझे लगता है कि देर समथिंग आर्ग्यूमेंटेटिव अबाउट साउथ एशिया, कि हमारे जो प्रेशर्स भी होते हैं ना रियासत के, वो भी बहुत हैं. मैं ये नहीं कह रही कि कोई हमें उसके लिए, बट देर इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इट कि हम टी वी पर बैठ के ये कहेंगे कि यार बड़ी ज़्यादा सेंसरशिप है आजकल. ये आपको बहुत ज़्यादा ममालिक में मिलेगा नहीं,
बट वो अनसेड हो जाते हैं ना. अगर आप देखते हैं कि तलत हुसैन की नौकरी चली गई, मतियुल्ला साहब गायब हो गए, अफसार को गोली लग गई, तो इट डजेंट हैव टू बी दैट डायरेक्ट कि मैं ये बोलूँगा तो ये हो जाएगा, बट एक इंसान के साथ हो तो सिक्स अदर पीपल फॉल इन लाइन देमसेल्व्स.
नो नो, मैंने वो कहा ना कि प्रॉब्लम्स बहुत है, मगर मैं ये भी कह रही हूँ कि विद दीज प्रॉब्लम्स देयर इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ सम स्पेस व्हिच यू विल नॉट फाइंड इन अदर सोसाइटीज. और जो दूसरी बात है ना जो आपने की, बहुत सही है, मगर यहाँ लोग दे आर टेकन ऑफ हियर एंड दे कम बैक ऑल्सो. दे आर नॉट वेरी मैनी कंट्रीज वेयर यू विल सी दिस. एंड द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हम इतने, वो जो मैंने रूल्स ऑफ द गेम की बात की ना, या हमारा इंट्रा एलीट कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी कोई नहीं है. आज एक ऑफ हियर हुआ है, कल दूसरा होगा, तीसरे दिन पहला वाला वापस आ जाएगा, दूसरा चौथे दिन आ जाएगा. सो वो एक इंस्टेबिलिटी के अंदर कॉन्स्टेंट जॉस्लिंग चल रही है, कोई जीत नहीं पाया एक तरफ का.
तो इसमें हम लेफ्ट के जब भी आते हैं लोग बोलते हैं व्हाई डज द लेफ्ट नॉट यूनाइट, व्हाई डू द जर्नलिस्ट नॉट यूनाइट. वो पॉलिटिशियन को हम जितनी भी गालियाँ देंगे, विलिंग पार्टनर्स एस्टैब्लिशमेंट को मिलते रहते हैं, जर्नलिज्म में भी मिलते रहते हैं कि ठीक है आज इसको गायब किया तो आप डिफेंड करो, कल उसको गायब करेंगे तो तुम डिफेंड कर लेना.
हम तो यार सबकी डिसअपीयरेंस पे बात करते हैं. डिविजन्स हैं बहुत ज़्यादा हैं. आई थिंक ये बहुत मसला है. आई मीन आई थिंक सोसाइटी, दिस वॉज सो सॉरी, आई एम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गैदर माई थॉट्स ऑन दिस क्वेश्चन. आई डोंट रियली हैव एन आंसर. आई कैन टेल यू दैट द फॉर एग्ज़ाम्पल जो सहाफ़त में जो ट्रेड यूनियंस वगैरह थी 70s 80s, मेरे ख्याल में जुडिशरी की मूवमेंट तक भी काफ़ी यूनिटी नज़र आई है और इफ़ेक्टिवली उन्होंने काम किया है. पोस्ट 2008 समहाउ ऑल आर relatively democratic organizations, be it the lawyers movement, be it the journalists unions, ye kamzor padi hain. Inke andar bhi penetration hum keh sakte hain in a way ho chuki hai. Uski wajah se unity pe impact aaya hai. To ab na to hame journalistic organizations us tarah effective nazar aati hain aur na wukla ki tanzeemein.
इसमें अगर स्पेसिफिकली हम मीडिया की बात करें इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब आज अगर हमें इतना ज़्यादा मुनज़्ज़म रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही, इज़ इट ऑल्सो कि जो लास्ट फ्यू ईयर्स में हुआ है कि अगर मिलिट्री के जियो और डॉन से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, राइट? डॉन लीक्स वॉज लाइक अ मीडिया का 9th May, जगह उन्होंने तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी हमें आ रही थी वो भी एपिटाइट कम हो गई है, लोग थोड़े बहुत चले गए हैं एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो आई मीन बीन सिग्निफिकेंटली गटेड आउट.
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड से दैट आई थिंक दैट द डिटेरियरेशन हैज़ बीन लॉन्गर. आई फॉर मी इट्स मैंने जैसे आपसे कहा ना कि मैं पोस्ट 2008 whether it's the lawyers legal organizations, whether it's the journalist organizations, because ye do aise idare the jinhone jab musharraf ki movement thi, anti musharraf movement chal rahi thi, bahut effective role raha tha inka, political parties ka bhi tha but inka bhi tha. Mujhe wo jo deterioration ya weakening nazar aayi hai na, main usko post 2008 dekhti. I'm not saying I'm right because I know a lot of people would like to say no, it's happened in the last 5 years. Maybe they're right.
I guess वो एक big turning point so, I mean Don Leach was huge.
No, Don Leach was a huge. But as I said, कि for me the weak when you see you're talking about Don Leach in terms of the Don Group or Geo. I'm talking about the trade unions. मैं जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ कि जिस किस्म के लोग शायद उनको पहले हेड कर रहे थे और उसके बाद जैसे जो हुआ. सो फॉर मी दैट वीकनिंग स्टार्टेड 2008. उसके अंदर फिर ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ नहीं हुआ वो भी. अब मैं बिकॉज आई स्टिल वर्क फॉर अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और सब कॉलीग्स हैं, मैं आपको ये कहूँ कि देखें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी तो जो ये किरदार था कि अगर एक हुकूमत है और उस हुकूमत को वीकन करने में या कॉर्नर करने में मीडिया इस्तेमाल हुआ, वो 2008 में भी हुआ, 2013 तक, 2013 के बाद भी हुआ. सो वॉट हैपन्ड वॉज जस्ट दैट as you saw post 2018 that the players kept changing but that role of or that script of the media being used that was there in 2008 also and wo mere liye wo constant hai ki media ko istemal kiya jata hai kisi ek political party ko ya ek hukumat ko corner karne ke liye ya weaken karne ke liye ya unko wo karne ke liye to wo mujhe to wo pattern nazar aa raha hai. उसके अंदर फिर बहुत सी लड़ाइयाँ आईं और गईं और उसमें बहुत से ग्रुप्स वीकन हुए, ये उसमें कोई शक नहीं है. बट मेरे लिए वो 2008 से पीरियड शुरू होता है. बट आई यू नो दैट्स माय परसेप्शन.
आई नो यू हैव अ शो सून एज वेल, लोगों के भी सवाल थे, हाउ कैन वी डाइवर्ट आवर यूथ फ्रॉम सोशल मीडिया टू रीडिंग बुक्स.
you're asking the person who also now reads far less because of social media. So pot kettle black wali baat hai. Yes, I mean, it's a very good point. They should be reading, but really it's a tough one. It's a tough one because social media is very addictive and very distracting.
As per Fafin, half of Pakistan's population is enlisted as voters. What will be the consequences if such large chunk of population is let down in the upcoming elections?
Let down how? ये एक बहुत वेग सा वो है बट ठीक यूथ वोटर है
वोट कहीं और दिया हो सामने कोई और आ जाए
फिर चैलेंज होगा ये तो फिर रियासत का मसला है कि आपकी जब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो और उसमें आप जो आपकी यूथ है उसको आप पॉलिटिक्स से भी डिसएंचांट करेंगे तो मैं ये नहीं कहती कि उसका बहुत नुकसान होगा बट नुकसान हो सकता है देखें हमने बलूचिस्तान में ये होते हुए देखा है what we see in Balochistan right now is a population that has given up on the political process and that is very very unfortunate ke wo ya to aapka jo Balochistan ka youth hai wo protests ki taraf chal pada hai ya wo violence ki taraf chal pada hai तो ये तभी होता है जब आप उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं बट ये ओवरनाइट नहीं होता बलूचिस्तान में हमने इस मसले को 2006 से पाला है सो इट टेक्स टाइम बट इवेंचुअली व्हेन यू डू नॉट अलाउ पीपल टू नेगोशिएट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द मींस ऑफ बैलेट देन द अदर ऑप्शंस आर जनरली ईदर द स्ट्रीट्स or even worse.
Are free and fair elections only a dream? Yes.
Yes, you have the answer.
why is there a need for a voter list? CNIC should be enough. A technical sa sawal hai. I don't know.
Haan, ye technical sa sawal hai.
How to educate and develop critical thinking in youth through political debates? Look, just like Arfa has the answers for everything. These are like
difficult questions. I know, ye to matlab ke padhe likhe logon ke ke puchne wale sawal hai aur main to ek wo jo kehte hai na ghatiya sa sahafi hu. Main kya janu? I think student unions ki bahut zarurat hai. We need student unions because that is how it happens in colleges. Youth hai. Main kal hi बल्कि आपको पता है कल जाहिद हुसैन साहब उनसे बात करी थी सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे
कल इधर ही थे वो
हाँ बता रहे थे वो तभी मैंने कहा कि आपको पता होगा सो जाहिद हुसैन साहब इज समबडी हु बिगैन हिज सॉर्ट ऑफ एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर यूज्ड टू लीड द एनएसएफ तो वो कल ही ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको मुल्क में जो उस वक्त की एक एनवायरनमेंट थी और उनको लगता था कि सारा मतलब कि यू नो द इंटायर शऊर आ गया है वो 70s की बात कर रहे थे एंड ही सेड कि जिस तरह हम डिबेट करते थे यूनिवर्सिटी में और जो हमें ट्रेनिंग मिलती थी हमें बात करनी पड़ती थी और हम डिबेट करते थे हर चीज़ को और मैंने जितना सीखा या मेरी जो कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई है आई ओ इट टू दैट पीरियड एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग यू नो Imagine, I mean, just I could not even imagine ki what it must have been to be a fly on the wall at that period. But clearly, we need that. We need student unions. Student unions ho, har tarah ki activities wo karwaye. Zaruri nahi hai wo sirf siyasi ho, wo chahe you know kitabein padhein, debate karein, cultural activities karwaye. But student unions ke kaam hai. Aur humne to unko discourage karte karte ya unko band karte karte ये एथनिक पॉलिटिक्स को जन्म दे दिए क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इजाज़त ही सिर्फ होती है कि बलोच ग्रुप बना लो पख्तून ग्रुप बना लो पंजाबी ग्रुप बना लो वो पाकिस्तानी ग्रुप कैसे बनेगा वी नीड द स्टूडेंट यूनियंस आई थिंक दे विल डू दिस जॉब यू आई कांट डू इट आई यू नो अनफॉर्चुनेटली वी नाउ एक्सपेक्ट टीवी चैनल्स एंड जर्नलिस्ट टू फिल दिस रोल
व्हाई इज पॉलिटिकल डिस्कोर्स लिमिटेड टू पार्टी पॉलिटिक्स
For this reason,
but TV पे आप actual भाई local government मसला है local government मसला है अब इसको discuss करें ना अब इसमें हम फंसे हुए हैं खान नवाज देखिए ये तो media
नहीं media का भी कसूर है but वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले भी की ना कि वो जैसे आपने कहा कि news agenda कौन set कर रहा है
आप तो
मैं तो नहीं कर रही, मैं मुझे नहीं, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने जब शो शुरू किया था तो 7 बजे का था, फिर मुझे मैं 8 बजे का शो करती थी, फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी रेटिंग जो है ना वो बड़ी ख़राब हो रही हैं, तो वी नीड अ यू नो वो पैनल डिस्कशन एट 8 o'clock, सो आप 7 बजे शो कर लें, एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो यू नो उसमें लड़ाई नहीं हो रही, उसमें बहस नहीं हो रही, 3 सियासतदान नहीं बैठे हुए, 1-on-1 इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो फिर क्या आप क्या होगा इन टीवी चैनल्स के ऊपर? यही कुछ होगा अगर सबका ख्याल ये है कि 8 बजे हमें वो 3 सियासतदान चाहिए और फिर हमने उनको आपस में बहस भी करवानी है, तो फिर तो पोलेमिक्स ही डिस्कस होंगे ना इस तरह करके, सीरियस इशूज़ कौन डिस्कस करेगा? पहले नहीं होता था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन जियो फर्स्ट बिगैन, वन ऑफ द अर्लियर चैनल्स, they used to do such amazing programming. I remember the first time I watched a discussion on you know abuse, incest on television, it was on Jio, and I was fascinated ki ye kitni sensitively itna mushkil subject discuss ho raha hai aur wo bhi television par urdu zuban mein. और एक वो शो होता था, आपको याद होगा, सब टीवी चैनल्स पे होते हैं, ऑडियंस बेस्ड, लोग बिठा के, बट सबने छोड़ दिया, कोई वैरायटी नहीं होती अब, एक वो ही एक ही चीज़ 7 बजे से लेके 12 बजे चलती है, सो यू नो ये इट्स गॉन बियॉन्ड जर्नलिस्ट्स.
व्हाई कांट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान वर्क इन अ फियरलेस एनवायरनमेंट एंड डू रिपोर्टिंग एंड गिव एनालिसिस विदाउट इन्फ्लुएंस प्रेशर एंड फियर? क्योंकि मर जाएंगे अगर करें ऐसा.
बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब कि पिछले दिनों में देखें हमने कितने सहाफ़ियों ने नौकरियां खोई, एक सहाफ़ी की जान गई, हमारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जो तो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उनको तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता. वी आर वेरी प्रिविलेज सिटिंग इन इस्लामाबाद, यहाँ इतने मसाइल रहे हैं, सहाफ़ी यू नो दे गॉट किडनैप्ड, पिक्ड अप, द लकी वंस केम बैक. दिस इज़ सो आयरॉनिक दैट आई से दैट द लकी वंस केम बैक विद इन आवर्स और डेज. सो यू नो इट्स अ चैलेंज, वी आई एम श्योर ऑल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान सफर फ्रॉम PTSD.
Alpha, how do you reconcile the idea that the individualism in political opinion on social media, inferred as Wild West for journalism by you in Indus Conclave Lahore, is seen as disruptive and chaotic, while the same individualism is celebrated by every vote counts in the context of electoral politics? Because voting, आपका हक है भाई.
ये तो I think हमने discuss कर लिया ना ये इसका वो जब मैंने तो आपसे कहा कि मेरे ख्याल में वो हम घबरा जाते हैं नई चीज़ से, स्पेशली दोज विद पावर आर स्केयर्ड ऑफ चेंज बिकॉज चेंज विल ऑलवेज अफेक्ट द पावर इक्वेशन. सो आई थिंक दैट्स ट्रू ऑफ द यू नो सोशल मीडिया ऑल्सो.
डू यू अग्री दैट द जर्नलिज्म बॉडी ऑफ नॉलेज एस्टैब्लिशेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इट टू नेगोशिएट विद पावर सेंटर व्हाइल दिस इज कम्प्लीटली एब्सेंट अमंग सोशल मीडिया पोलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स? इफ येस, why do almost all traditional journalists give gravitate towards social media, including the podcast? Is it to reclaim or maintain their age-old editorial influence in the public and political discourse?
बड़ा मुश्किल सवाल था, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे.
क्यों अगर भाई अगर जो सोशल मीडिया है उसकी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो क्यों ये सारे जो हमारे मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं ये आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, पॉडकास्ट पर भी आते हैं, आपकी तरफ इशारे.
नहीं मैं तो आ रही हूँ भाई, मैं तो आपसे आते साथ कहा कि देखिए मैं तो बड़ी खुश हुई कि मुझे किसी ने बुलाया है और मेरे से भी कोई पूछ रहा है, नहीं तो मैं तो अमूमन सवाल पूछ रही होती हूँ लोगों से. नहीं बट आई थिंक दैट शोज, देखिए नोबडी कैन, यू कांट स्टॉप चेंज, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ. तो ये समझना कि यू नो अखबार छपे और अखबारों के बाद टेलीविज़न आया तो क्या टेलीविज़न के बाद अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं करेगी? The future will always bring new ways. The only constant is कि journalism या अखबार अहम इसलिए था क्योंकि it was the means through which information reached the ordinary person. तो आपको पता है जब पुराने ज़माने में before television, अखबार का मकसद क्या होता था कि कहीं अगर कोई accident भी हुआ है ना तो उस एक्सीडेंट में जितने लोग मरे हैं उन सब का नाम जो होता था वो अखबार में छापा जाता था कि भई दुनिया के या मुल्क के कैसे कोने में एक्सीडेंट हुआ है आपके पास, या टेलीग्राम है उस ज़माने में, या उससे पहले की बात कर लें तो वो अखबार के थ्रू ही आपने बताना है ना कि कौन कौन जिंदा बच गया, कौन कौन मर गया. आप सोचें आप टाइटैनिक का वाक़या हुआ है, इमेजिन दैट इफ़ यू डू नॉट हैव द टेलीफोन और वट एवर, हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन जिंदा है कौन बचा है? वो अखबार आएगा तो आपको पता चलेगा ना, जिसमें लिस्ट छपी होगी नामों की, अखबार के अंदर छपते थे नाम लोगों के जो जो पास होते थे या जिनके एग्ज़ाम रिजल्ट्स होते थे कि ज़माने में, कि वो अखबार छपेगा, आप वो अखबार में अपना रोल नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पास हुए हैं कि नहीं हुए. इट वॉज़ द मीन्स ऑफ कैरियंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू नो वेर एवर इट वॉज़ प्रोड्यूस्ड टू द पर्सन हु नीडेड इट. अब वो इंफॉर्मेशन जो है कितने तरीक़ों से उन लोगों तक पहुँचती है, और उसके ऊपर अब गेट कीपिंग की ज़रूरत भी नहीं रही.
किसी ने यही गेट कीपिंग तो नहीं है वैसे, वो शायद को टेक्निकल इश्यू होगा. किसी ने बोला ये डॉन साल हो गया कमेंट सेक्शन कह रहे हैं भाई हम वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं.
हाँ ये मैंने भी देखे देखे उनसे कहें कि मैं क्योंकि अब जो डॉन अखबार है और जो डॉन की वेबसाइट है उससे मेरा कोई एडिटोरियल ताल्लुक नहीं है, सो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट दैट कि वो क्यों नहीं हो रहा, बट मुझे नहीं मालूम कि वो क्या वजह है.
किसी ने भी बोला उनसे बोले प्लीज़ थोड़ी कम हाँ. मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल करें कॉलम्स में मैं.
अच्छा मेरी अंग्रेजी. अच्छा आई विल ट्राई माय बेस्ट. यू
डॉन शुड डू लाइक
डॉन
शुड आल्सो डू लाइक ऑटो ट्रांसलेट एआई. अब तो इतना मुश्किल नहीं होगा अपने वो आर्टिकल्स का, दे शुड डू इट इन उर्दू. नहीं
उन्होंने कोई वॉइस का तो उसमें तो फीचर डाला है,
अंग्रेजी है ना वो. हाँ. तो आई थिंक दैट्स प्रीटी इजी.
प्ले कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, आप जो है आप अगले लेवल पे जा रहे हैं और कह रहे हैं ये भी करो.
वैसे ये सच है कि अंग्रेजी में ज़्यादा फ्रीडम है,
ऑफ कोर्स
उर्दू में बहुत कम फ्रीडम है.
लेकिन जितनी आउटरीच होगी
हाँ
उतने ज़्यादा कदगने होंगी एज वी कॉल इट इन उर्दू. तो जितना लिमिटेड वो होगा उतनी आप ज़्यादा फ्रैंकली बात करेंगे. तो अंग्रेज़ी में आप ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ पर भी, सियासी इश्यूज़ पे भी, रिलीजियस इश्यूज़ पर भी. सो द ग्रेटर द आउटरीच. सो फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू प्रेस there is a difference, and then from the Urdu press to television is a difference. Look at the number of people you are reaching. Of course it makes a difference.
Good luck to all the people that you reach and kuch acche
program. Very few of them.
Hey, jhoot bolte hain wo rating se bare mein. Nahi but wohi hai na ki it's easy. Main bhi jaya media bakwas hai, but then staying in there and then fighting that battle every day and be like acha yaar isme bhi hum kuch do cheeze achhi kar le, teen cheeze achhi kar le. It's a tough battle and you're taking that battle on, so good luck to you and more power to you.
Thank you.
Thank you for coming and thank you for listening. Take care. Bye bye.